ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत में अमीर शेख मैशल अल अहमद अल जाबेर अल सभा और शहजादे सबा अल खालिद अल सभा के साथ वार्ता करेंगे। वे प्रधानमंत्री अहमद अल अब्दुल्ला अल सभा के साथ भी शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। श्री मोदी कल दो दिन की यात्रा पर कुवैत पहुंचे। कल श्री मोदी ने एक विशेष आयोजन में भारतीय जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुवैत के विकास और भारत कुवैत संबंधों की मजबूती में भारतवंशियों की बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों को प्रवासी भारतीय दिवस और अगले महीने आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व बंधु रहा है और तकनीक तथा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कुवैत के मीना अब्दुल्ला में श्रमिक शिविर का दौरा किया। इस शिविर में भारत के अलग अलग राज्यों से आए लगभग 1,500 श्रमिक रहते हैं। प्रधानमंत्री ने श्रमिकों के साथ पिछले 10 वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। महाराष्ट्र में मंत्रियों के विभागों का आवंटन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय, ऊर्जा, विधि और न्यायपालिका, सार्वजनिक प्रशासन, सूचना और प्रचार विभाग अपने पास रखा है। शिवसेना नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास और लोक सेवा विभाग दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को आबकारी सहित वित्त और योजना मंत्रालय दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व मंत्री और एनसीपी के हसन मुशरिफ को चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल देहरादून में वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और पौध क्षेत्र 8,27,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में फैला है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के 25% से अधिक है। वर्ष 2021 के मुकाबले 2023 में वन क्षेत्र में लगभग 1,500 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। श्री यादव ने बताया कि दावानल की जानकारी सही समय पर देने के उन्नत तकनीक के कारण वन प्रबंधन बेहतर हुआ है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हर 2 साल पर जारी की जाती है। पंजाब में कल शाम चंडीगढ़ के पास मोहाली में एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 15 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सेना और पुलिस मलबे में दबे लोगों की तलाश तथा बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। भारत ने जर्मनी के मैग्डेबर्ग में हुए हमले की निंदा की है। इस हमले में 5 लोगों की मृत्यु हुई और 200 से अधिक घायल हैं। घायलों में 7 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। जर्मनी स्थित भारतीय दूतावास घायलों के संपर्क में है। यह घटना शुक्रवार शाम हुई जब एक कार भीड़भाड़ वाले क्रिसमस बाजार में घुस गई। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप अगले वर्ष भारत में आयोजित होगी। इसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन के मुकाबले होंगे। ये पहली बार होगा जब भारत जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की मेजबानी करेगा। देश में आयोजित होने वाली तीसरी प्रमुख विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता होगी। पिछले वर्ष भोपाल में सीनियर विश्व कप और इस वर्ष निशानेबाजी विश्व कप फाइनल का आयोजन हुआ था। भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की आईसीसी चैंपियनशिप श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहला मैच वडोदरा में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। क्वालालंपुर में अंडर 19 महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 117 रन बनाए। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 16 ओवर में 6 विकेट पर 68 रन बना लिए हैं। टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक अजेय रही है। भारत ने सुपर 4 मैच में श्रीलंका को हराकर और बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वाश टूर्नामेंट के महिला सिंगल फाइनल में आज भारत की अनाहत सिंह का मुकाबला भारत की ही आकांक्षा सालुंखे से होगा। ये मुकाबला दोपहर 2:45 बजे से मुंबई में होगा। 2 बार के कांस्य पदक विजेता अनाहत ने मिस्र की नूर खफागी को हराकर और शीर्ष वरीयता प्राप्त आकांक्षा ने मिस्र की यना स्वाइफी को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में वीन चुत्रोनी को मलेशिया के अमिशन राजचंद्रन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।